आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत के इमदाद बाहमी के सेक्टर को वसत देने के लिए इमदाद बाहमी की आलमी तंजीमों के साथ शराकतदारी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत अगले 3 से 4 बरस के दौरान अपना ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU तैयार कर लेगा। पाकिस्तान की ISI से वाबस्ता बब्बर खालिसा का एक दहशतगर्द उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया गया है। यूरोपीय रहनुमाओं ने अमरीका की जानिब से फौजी इमदाद रोक दिए जाने के बाद यूक्रेन की हिमायत के लिए हंगामी मीटिंग की। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में हैदराबाद के मकाम पर हैदराबाद FC और पंजाब FC के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत के इमदाद बाहमी के सेक्टर को वसत देने के लिए इमदाद बाहमी की आलमी तंजीमों के साथ शराकतदारी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। जनाब मोदी ने इमदाद बाहमी के इदारों के जरिए नामियाती मसनूआत को फरोग देने की जरूरत पर भी जोर दिया। वजीर आजम ने आज मुल्क में इमदाद बाहमी के सेक्टर की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने जरई तौर तरीकों में बेहतरी लाने के लिए मिट्टी की जांच का मॉडल तैयार करने और बरामदात पर तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया। वजीर आजम ने माली लेन देन में सहूलत फराहम करने के लिए UPI को रोपे और किसान क्रेडिट कार्ड के साथ मरबूत करने की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे एग्री स्टैक के इस्तेमाल की सिफारिश करते हुए एक ज्यादा पायदार जरई मॉडल के तौर पर इमदाद बाहमी पर मबनी ज़राअत को फरोग देने के बारे में भी बातचीत की, ताकि इस शोबे में ज़राअत और मुतालिका सरगर्मियों को उसा दी जा सके। जनाब मोदी ने स्कूलों, कॉलेजों और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में इमदाद बाहमी से मुतालिक कोर्सेज मुतारिफ कराने की भी तजवीज पेश की। उन्होंने आने वाली नस्लों को तहरीक देने के लिए इमदाद बाहमी के कामयाब इदारों को फरोग देने पर भी जोर दिया। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असदुल्ला।
इस मीटिंग में उमूर दाखला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह और हुकूमत के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत अगले 3 से 4 बरस के दौरान अपना ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU तैयार कर लेगा। उन्होंने कहा कि भारत के AI मॉडल कम्प्यूटेशन GPU की कीमत दुनिया में सबसे कम है। 40% सरकारी सब्सिडी के बाद इसकी कीमत फी घंटा तकरीबन 67 रूपये है। नई दिल्ली में AI कोक्ष, AI कंप्यूट पोर्टल और मसनूई जहानत पर मबनी दीगर इकदाम का आगाज करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि एक साल पहले काबीना ने इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी थी। मुल्क ने मसनूई जहानत के शोबे में काफी कुछ हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले हुकूमत ने 10,000 GPU तैयार करने का हदफ मुकर्रर किया था। GPU तैयार करने का ये हदफ तजावुज करके 14,000 पर पहुंच गया है।
650 GPUs is our biggest supercomputer, and this is 14,000 GPUs already in place, and this is just the beginning. Every quarter we will add more compute. Every coming days we'll add more compute, and this will create the opportunities for everybody.
वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत अगले 5 बरस में सेमीकंडक्टर्स, मसनूई जहानत और टेली मवासलात जैसे अहम टेक्नोलॉजी शोबों में दुनिया के सरकर्दा 5 मुल्कों में से एक होगा। उन्होंने कहा कि भारत एक अहम और बड़ी AI ताकत बनने के लिए तैयार है। अगले मरहले में 100 से 150 यूनिवर्सिटियों में जदीद तरीन AI तहकीकी आलात दस्तयाब होंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स STF और पंजाब पुलिस ने आज एक मुश्तरका कार्रवाई में बब्बर खालिसा इंटरनेशनल BKI और ISI मॉड्यूल के एक सरगर्म दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है, जिसकी शनाख्त लजर मसीह के तौर पर की गई है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स STF के मुताबिक ये कार्रवाई कौशाम्बी जिले के कोखराज पुलिस स्टेशन में की गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्द के कब्जे से गैर कानूनी असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद किया है, जिसमें 3 कारामद हैंड ग्रेनेड्स, 2 कारामद डेटोनेटर्स, 13 कारतूस और 1 गैर मुल्की साख्त की पिस्तौल शामिल है। उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार ने बताया कि मुलजिम मसीह ने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान एक बड़े दहशतगर्दाना हमले का मंसूबा बनाया था।
महाकुंभ के आयोजन के पहले ऐसे विघटनकारी तत्वों के द्वारा जो कि देश और विदेश में मौजूद थे उनके द्वारा गड़बड़ी फैलाने की तथा कुछ ऐसी घटनाएं कारित करने की सूचना दी गई थी और यह सूचना विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हुई थी। उसी के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता उत्तर प्रदेश के एटीएस को बीती रात मिली है और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ तथा पंजाब पुलिस के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन में की गई है।
झारखंड के साबिक वजीर आला और रियासती बीजेपी के सदर बाबूलाल मरांडी को आज भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामानी बोर्ड के जरिए मुकर्रर करदा मरकजी मुशाहिदीन और अरकान असम्बली की जानिब से कानून साज पार्टी का रहनुमा दोबारा मुंतखब किया गया। चुनाव के लिए मरकजी मुशाहिदीन भूपेंद्र यादव और के लक्ष्मण ने आज बाबूलाल मरांडी के नाम का ऐलान किया। जनाब मरांडी झारखंड असेंबली में अपोजिशन लीडर भी होंगे। उमूर दाखला के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने आज नई दिल्ली में कबायली नौजवानों के तबादले के प्रोग्राम TYEP के तहत तकरीबन 200 कबायली नौजवानों के साथ बातचीत की। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कबायली अजला से ताल्लुक रखने वाले ये नौजवान फिलहाल कौमी राजधानी के दौरे पर हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासर जिलों में काफी तरक्याती काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों और रेलवेज का नेटवर्क तैयार किया गया है। इसके अलावा इन जिलों में नए स्कूल खोले गए हैं। CISF के डायरेक्टर जनरल राजविंदर सिंह भट्टी ने मुतला किया है कि अगले 2 बरस में CISF में 20,000 से ज्यादा एहलकारों की तकर्री की जाएगी। आज चेन्नई में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगले बरस हिमालय की चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए खवातीन की एक सरकर्दा टीम जेर तरबियत है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी से मुतालिक मौजूदा दौर के चैलेंजों से निमटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। नए इनकम टैक्स बिल से मुतालिक लोकसभा की चीदा कमेटी की मीटिंग आज नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में हुई। कमेटी ने बिल पर तबादला ख्याल करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ साथ अर्नस्ट एंड यंग के नुमाइंदों को मदु किया है। 31 रुकनी कमेटी की सरबराही बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बैजयंत पांडा कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली मेट्रो ने आज वसंत कुंज में गोल्डन मेट्रो लाइन की सुरंग की खुदाई का काम मुकम्मल कर लिया। 26 किलोमीटर तवील मेट्रो लाइन एरो सिटी से तुगलक आबाद कॉरिडोर तक की मसाफत तय करेगी और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसे अपने चौथे मरहले की तौसी के एक हिस्से के तौर पर तामीर कर रही है। मकानात और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल और मकानात और शहरी उमूर के वजीर ममलिकत तोखन साहू इस मौके पर मौजूद थे। जनाब मनोहर लाल ने कहा कि इस साल दिसंबर तक भारतीय मेट्रो नेटवर्क अमरीका की न्यूयॉर्क मेट्रो से आगे बढ़ जाएगी। यूरोपीय यूनियन ने आज एक रोजा इमरजेंसी मुजाकरात की शुरुआत की। इन मुजाकरात का मकसद यूरोपीय यूनियन की सिक्योरिटी को मुस्तहकम करना और इस बात को यकीनी बनाना है कि यूक्रेन की मुकम्मल हिफाजत की जाएगी। जर्मनी के अगला मुमकिना चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने और चोटी मीटिंग के चेयरमैन एंटोनियो कोस्ता ने ब्रसल्स में बहुत कम मुद्दत में यूरोप के दिफाई निजाम को मजबूत करने के तरीकेकार पर बातचीत की। मर्ज ने दिफा पर होने वाले खर्च को बढ़ाने की खातिर तमाम ममालिक के जरिए कर्जा लेने से मुतालिक कवानीन में नरमी लाने के लिए इस हफ्ते कई मंसूबे पेश किए। यूरोपीय पॉलिसी मरकज के मुफक्किरीन ने कहा कि अमरीका की पॉलिसी में हालिया बदलाव के मद्देनजर यूरोप को दिफा से मुतालिक अपने जरूरी मामलों को संभालना होगा। अमेरिका ने यूक्रेन के साथ खुफिया मालूमात के इश्तराक और फौजी इमदाद पर रोक लगा दी है। उसने ये फैसला यूक्रेन पर दबाव बनाने की एक मुहिम के तहत किया है ताकि उसकी हुकूमत रूस के साथ जारी जंग को खत्म करने के लिए व्हाइट हाउस की जानिब से पेश किए गए मंसूबे को तस्लीम कर ले। दरियाओं से मुतालिक भारत बांग्लादेश मुश्तरका कमीशन की 86वीं मीटिंग आज सुबह कोलकाता में शुरू हुई। इस मीटिंग में भारत और बांग्लादेश में बहने वाली नदियों के उमूर से मुतालिक अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि दोनों मुल्कों की सेक्रेटरी सतह की मीटिंग के बाद इस सिलसिले में दोनों मुल्कों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल 6 रुकनी तकनीकी कमेटी तश्कील दी जाएगी। ये तकनीकी कमेटी अगले 3 महीने के दौरान इस मुआहदे के मुस्तकबिल के बारे में फैसला करेगी। इस कमेटी की तश्कील के मामले पर भी दरियाओं से मुतालिक मुश्तरका कमीशन की मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। वाज़े रहे कि 1996 में भारत और बांग्लादेश के दरमियान गंगा आबी मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे। 30 साल पुराना मुआहदा अगले बरस खत्म हो रहा है। اس میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے بنگلہ دیش کا 11 رکنی وفد کولکتہ آیا ہے۔ بنگلہ دیشی وفد نے بتایا کہ میٹنگ کے ایجنڈے میں کل 11 معاملات شامل ہیں۔ غزہ سے متعلق عالمی پروگرام WFP نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کو ملنے والی ماہانہ غذائی امداد میں کٹوتی کر کے اسے اپریل سے 12.5 ڈالر فی ماہ سے گھٹا کر 6 ڈالر فی ماہ کر دے گا۔ یہ فیصلہ مالی بحران کے سبب کیا گیا ہے۔ یونائیٹڈ نیوز آف بنگلہ دیش نے فنڈز کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے خبر دی کہ WFP نے ایک خط میں کہا ہے کہ وہ امداد کرنے والوں کی جانب سے معقول حمایت کو یقینی بنانے میں ناکام رہا ہے۔ اس فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے اعلی افسر محمد میزان الرحمان، جو پناہ گزینوں کے کیمپس کی دیکھ بھال پر مامور ہیں، نے کہا کہ روہنگیا پناہ گزینوں کو ملنے والی موجودہ مالی امداد پہلے سے ہی ناکافی ہے۔ ان حالات میں موجودہ امداد میں نئی کٹوتی سے ہونے والے نتائج کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ سفارتی ذرائع نے اس مالی بحران کا سبب بین الاقوامی ترقی سے متعلق امریکی ایجنسی کی جانب سے کی جانے والی مالی امداد کی معطلی کو قرار دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں بدھ کے روز طلبہ نے راجشاہی میں ریلوے لائن بند کر دی۔ یہ طلبہ ڈھاکہ یونیورسٹی اور اقتدار میں ڈھاکہ کے مرکزی تسلط کو ختم کرنے، تمام شعبوں میں تقرریوں اور لامرکزیت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میڈیا کی خبروں کے مطابق مظاہرین نے شکایت کی کہ ایڈوائزری کونسل کی تقرریوں سے لے کر یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC ڈھاکہ تک ہر جگہ ڈھاکہ یونیورسٹی کا غلبہ ہے۔ ڈھاکہ کی پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے طلبہ نے بھی کمیٹی کی 9 تشکیل طلبہ تنظیموں میں پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی مناسب نمائندگی کا مطالبہ کیا۔ تائیوان نے ان رپورٹوں کے بعد تحمل کا مطالبہ کیا ہے کہ چین 2025 میں اپنے فوجی اخراجات میں 7.2% کا اضافہ کرے گا۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق تائیوان کی مین لینڈ افیئرز کاؤنسل نے کہا کہ چینی فوج تائیوان کے قریب اپنے جنگی طیاروں کے گشت کے ساتھ دفاعی اخراجات اور جارحیت میں اضافہ کر رہی ہے۔ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ تائیوان، ویتنام، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے قریب سمندروں میں چینی فوجی مشقوں میں بحری حفاظت سے سمجھوتا کیا ہے اور خطے میں تناؤ بڑھایا ہے، جس سے بین الاقوامی تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔ کل قومی مقننہ میں پیش کیے گئے ایک مسودہ بجٹ رپورٹ کے مطابق چینی حکومت 2025 مالی سال کے لیے 246 ارب ڈالر کے دفاعی بجٹ کی خواہش رکھتی ہے۔ یہ سال بسال کے حساب سے 7.2% سے زیادہ ہے۔ انڈین سپر لیگ فٹ بال میں حیدرآباد کے گچی باؤلی اسٹیڈیم میں پنجاب ایف سی نے حیدرآباد ایف سی کو 1-3 سے ہرا دیا۔ کل جمشید پور کے جے آر ڈی ٹاٹا اسپورٹس کمپلیکس میں اوڈیشا ایف سی نے جمشید پور ایف سی کو 2-3 سے ہرا دیا تھا۔ کرکٹ میں خواتین پریمیئر لیگ میں لکھنؤ میں بھارت رتن شری اٹل بہاری واجپائی اکانا اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں یو پی واریئرز نے ممبئی انڈینز کے سامنے جیت کے لیے 151 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ یو پی واریئرز نے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹ پر 150 رن بنائے۔ اس سے پہلے ممبئی انڈینز نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو COVID-19 وبا کے دوران ان کی اسٹریٹجک قیادت اور گراں قدر تعاون کے اعتراف میں باوقار آرڈر آف فریڈم آف باربڈوز ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ باربڈوز کے برج ٹاؤن میں منعقدہ ایک تقریب میں وزیر اعظم مودی کی طرف سے امور خارجہ کے وزیر مملکت نے یہ ایوارڈ وصول کیا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کے امداد باہمی کے سیکٹر کو وسعت دینے کے لیے امداد باہمی کی عالمی تنظیموں کے ساتھ شراکت داری بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ بھارت اگلے 3-4 کے دوران اپنا گرافکس پروسیسنگ یونٹ GPU تیار کر لے گا۔ پاکستان کی ISI سے وابستہ ببر خالصہ کا ایک دہشت گرد اتر پردیش میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یورپی رہنماؤں نے امریکہ کی جانب سے فوجی امداد روک دیے جانے کے بعد یوکرین کی حمایت کے لیے ہنگامی میٹنگ کی ہے۔ اور انڈین سپر لیگ فٹ بال میں حیدرآباد کے مقام پر حیدرآباد کو 1-3 سے پنجاب ایف سی نے شکست دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔